हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का आज के श्रीमद्भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है और विशेष स्वागत करेंगे हम हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी का। हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाला महाराज ने और हमें आशीर्वचन देने के लिए यहाँ पे आगे उपस्थित है। और साथ में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे बीच में उपस्थित परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी का भी हरिओम। और विशेष रूप से हमारे ज्योतिधि हैं आज के, फिर हम स्वागत करना चाहेंगे बॉय से यूएस से आए हिज ग्रेस गोपाल हरि प्रभु जी का भी हरिओम। और साथ में
ही इज अ डॉक्टर
PhD
From Oxford University।
और सब जानते हैं ये है उनके बड़े भाई हिज ग्रेस राधिका रमन प्रभु, दोनों वर्ल्ड गोपाल हरि प्रभु। बहुत लंबे अंतराल के बाद यहाँ पंजाबी बात में आए हैं और साथ में आप सभी भक्तों का
माता जी को सेमिनार देती है।
इनके जो माता जी है वर्ल्ड फेमस है हर ग्रेस अरुणी माता जी, जो कि होम स्कूलिंग के लिए और जगह जगह जाके आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के ऊपर भी सेमिनार देती है। और साथ में सभी भक्तों का स्वागत है, विशेषकर इस कौन रोहिणी से आए भक्तों का और आप सबका। कृपया करके आप सबसे निवेदन है कि मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पे रखें और बहुत ही ध्यान पूर्वक महाराज जी के मुखारविंद से आशीर्वाद ग्रहण करें।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंध दसवां अध्याय श्लोक नंबर 25। ना विक्रिया
विश्वासुरात्सकास्यामेन
विताभिमते तवापि महाभिमना स्वाकृतादिमन्त्रणम्
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की नहीं विक्रिया भौतिक परिवर्तन विश्व सुहृत प्रत्येक प्राणी के मित्र श्री भगवान का सखस्य मित्र आपका साम्येना आपके मानसिक संतुलन के कारण वीत अभिमते जिसने जीवन के देहात्म बोध को सर्वथा त्याग दिया है तब तुम्हारा अति निसंदेह महत विमानात महान भक्त का अपराध करने से स्वकृतात मेरे अपने कार्य से ही निश्चित रूप से मात्र का मुझ जैसा व्यक्ति नक्षति विनष्ट हो जाएगा अधूरात शीघ्र ही अपि निश्चय ही शूलपाणी शिवजी शूल पाणी के समान शक्तिशाली होकर भी। अनुवाद। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करने करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप दृढ़ संकल्प हैं जबकि मैं अपराधी हूं, इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा।
अनुवाद दोहराइए,
अनुवाद करते हैं, अगले पीछे दोहराइए। हे स्वामी,
आप समस्त
जीवात्माओं
के
मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबों के लिए समान हैं और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूं कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप दृढ़ संकल्प हैं जबकि मैं अपराधी हूं, इसलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हो, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। तात्पर्य, महाराज रघुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे, अतः वे जड भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए महाराज रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध ना करें। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत मध्य 13 में कहते हैं, शूल पाणी सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। हे न वैष्णव निंदा सर्वज्ञ है, से जनेर अधा पाद सर्व शास्त्र है। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी शिवजी के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्मपद से गिर जाएगा, यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवत मध्य 22 में यह भी कहा है, वैष्णव निंदा करीबे कुयारगण, तार रक्षा सामर्थ्य नाहिक कुंजन। शूल पानी सम यदि वैष्णव निंदे, तथापि नाश जाए कहे शास्त्र निंदे। इहा ना मानिना ये सुजन निंदा कर, जन्म जन्म इसे पापिष्ट दैव दोषे मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शिवजी के समान बलशाली क्यों ना हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के नियमों की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गए।
ओम ज्ञान ज्ञानांजना शाक्य चक्षुर्मृतांगेन तस्मै श्रीचैतन्य मनोविष्टं आनन्देन भूकृते वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतापनकमलं श्रीगुरु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कृपा संयुक्त पवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आपने आने वाला तात्पर्य ध्यान से सुना, भूत बन गए लिखे ना विक्रिया विश्व सुरस कश्यप नवीन मिता भी मते स्वापि महाभिमाना स्वाकृता मद्रम ननुक्षदी शिलाफनी। तो ये श्लोक का उच्चारण महाराज रोग ना कर रहे हैं। महाराज भोगना राजा थे और धार्मिक भाव के थे। एक समय उन्हें पलकी में उठाकर उनके सेवक में जा रहे थे कथा सुनने के लिए कपिल आश्रम में। तो संभावना है ये कपिल आश्रम कुरुक्षेत्र में भी है। तो राजा राजा को जब देर हो रही थी वो चाहते थे जब तेजी से पहुंचा जाओ जल्दी चला जाए। प्राचीन समय में मोटरे तो थी नहीं, जो राजा थे उन्हें पलकी में उठाया जाता था, साधारण व्यक्तियों को नहीं। तो राजा ने अपने सेवकों को कहा जल्दी चलाओ। उन्होंने प्रयास किया, रास्ते में उन्होंने देखा जद भारत को। जद भारत पूर्व जन्म में भारत महाराज पूर्व जन्म में एक पशु थे, उससे पहले भारत महाराज थे जो भगवान ऋषभदेव के 100 बेटों में सबसे बड़े बेटे थे और उन्होंने पूरे पृथ्वी पर राज्य किया। उनके राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि पूरे पृथ्वी का नाम भारतवर्ष हो गया था। आज तो जब आप भारत शब्द का उपयोग करते हो तो इसका यही अर्थ है इंडिया जो आप आज नक्शे में देखते हैं। पर एक समय पूरे पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। जब भारत ने राज्य किया और उसके पश्चात राजा अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंप कर जंगल में गए तपस्या उठाने के लिए। और जंगल में एक दिन उन्होंने देखा एक हिरनी का पीछा एक शेर कर रहा था। वो हिरनी के घर में बच्चा था, बच्चा तो बाहर गिर गया पर मां मर गई। तो राजा ने सोचा कि ये शेर भगवान की इच्छा है कि मैं इस पशु की देखभाल करूं। पर इस पशु के प्रति बड़ा गहरा आकर्षण हो गया। वो एक दिन जब ये पशु उनकी नजरों से दूर था उनको ढूंढते ढूंढते श्री त्याग दिया। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवम कि इस प्रकार की योजना करनी चाहिए जहां मन होगा मृत्यु के समय उस प्रकार का देह प्राप्त होगा। और हमें इस प्रकार की योजना करनी चाहिए कि हम अंतिम समय में किसका स्मरण कर सके, अंत्य नारायण स्मृति कि अंतिम समय में नारायण का स्मरण करें। पर क्योंकि इस राजा का बड़ा गहरा आकर्षण था इस पशु के प्रति, खोजते खोजते मन कहां था इस पशु के विषय में, जिसके कारण उन्हें एक उस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ा। और ज्यादा देर नहीं रहे उस देह में और फिर उन्होंने एक ब्राह्मण खानदान में जन्म लिया जिसमें उनका नाम था जद भारत। जद भारत समझ पाए कि पूर्व जन्म में क्या गलतियां हुई थी तो उन्होंने निर्णय कर लिया मैंने अब ये गलती फिर से नहीं करनी। गलती हम सब करते हैं पर हमें हमारा ये भाव होना चाहिए कि हम गलतियों से शिक्षा ग्रहण करें और फिर रिपीट नहीं करें ये नहीं कि आज गलती की कल माफी मांगा तो फिर गलती की। तो जब भारत के रूप में उन्होंने निर्णय कर लिया था मैंने अब से फिर से वो गलती नहीं करनी, ऐसे मान मन का व्यवहार था जैसे गूंगे और बहरे हैं, तो गूंगे और बहरे थे नहीं और बड़े ऊंचे कद के थे, लंबे कंधे इत्यादि। तो जब राजा ने कहा अपने भक्तों को सेवकों को जल्दी चलो, और उन्होंने देखा ये लंबा वेल बिल्ड व्यक्ति, उन्होंने कहा हाँ राजा को उठाने में सहयोग दो, जनभान मान गए। तो जनभान तो दूसरे सेवकों में एक महान अंतर था, अंतर ये था दूसरे सेवक तेजी से दौड़ रहे थे पर जल भारत क्योंकि भगवान का भक्त था उत्तम कोटि का, वो बड़े सावधानी से चल रहे थे, अपने कदम को भी पृथ्वी पर रखने से पहले देखते थे आगे 3 कदम तक कोई जीवात्मा तो नहीं है, जिसके कारण पल की तेजी से जाने के बजाय ज्यादा धीमे जाने लगे। राजा ने क्या हो गया, मैंने कहा था तेजी से जाओ तुम धीमे जा रहे हो। सेवकों ने कहा हे राजा हम इसके कारण नहीं है, इसका दोष है ये नए व्यक्ति जिसको हमने जोड़ा है जल भारत। तो राजा ने जल भारत को डांटा, कहा तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा हूं और तुम सहयोग देने की बजाय अड़चन बन रहे हो। जल भारत ने शुरू में तो सह लिया, फिर जब भारत ने देखा कि राजा को अभी एक उपदेश देना चाहिए, राजा का अपराध बढ़ते जा रहा है, तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। जब बोलना शुरू किया रघुनाथ महाराज तुरंत ही समझ गए ये कोई गूंगा और बहरा व्यक्ति नहीं है, ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, मैंने अपराध कर दिया है इसको डांटकर। और फिर राजा तुरंत पलकी से उतरे और उनसे क्षमा मांगी। तो संक्षेप में यह बैकग्राउंड, तो आज के श्लोक में क्या उपदेश मिल रहा है, भागवतम के हर श्लोक में बड़ा गहरा उपदेश मिलता है। प्रभा जी ने कहा था कि भागवतम का अगर एक श्लोक भी पढ़कर ध्यान से अपना लो तो आपका जीवन सफल हो सकता है। तो जद भारत इस महाराज रघुनाथ क्या कह रहे हैं, हे मेरे स्वामी तुम परम भगवान के मित्र हो और सब जीवात्माओं के मित्र हो। जैसे आपने देखा जद भारत एक चीटी बड़ी पावली रखना चाहते थे, सूर्यदास सर्वा दही नाम, जो भगवान के भक्त हैं वो सबके मित्र हैं, जो उनकी आलोचना करते हैं उनके भी मित्र हैं, किसी के शत्रु नहीं। जब प्रहलाद महाराज के पिता की इच्छा थी कि प्रहलाद को अध्याय ये भौतिक शिक्षा दी जाए कौन है मित्र कौन है शत्रु, प्रहलाद ने कहा कि मेरी इसमें कोई रुचि नहीं कि सभी मेरे मित्र हैं। तो भक्त के लिए सभी उनके मित्र बनते हैं। तो कह रहे हैं और आप परम भगवान के क्या हो, बंधु हो। ये जो भक्त है भगवान का बंधु इस दृष्टि से है वो सदा भगवान की सेवा करना चाहता है, आप सबके प्रति समानता से व्यवहार करते हो, ये बड़ा अवश्य लक्षण है भक्त के लिए कि वो पक्षवादी नहीं करे, सरहरि के प्रति समानता से व्यवहार जैसे भगवान समानता से व्यवहार करते हैं, भक्त जो है सबके प्रति समानता से व्यवहार करता है, यानी किसी को कोई अपने पक्ष का है तो उसको ज्यादा सुविधा, सबके प्रति समानता से व्यवहार। और आप भौतिक हेय से मुक्त हो, जिस व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है वो जानता है ये शरीर 2 दिन का साथी है, वो जानता है कि शरीर उसका असली स्वरूप नहीं। जैसे कि भगवान गीता के 2 अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापित कर रहे हैं कि क्या हमारा असली स्वरूप क्या है जीवात्मा, और यह आत्मा का क्या है रूप, न जन्म न मृत न मृत्यु न जायते मृत्यु वाचना, आत्मा क्या है सनातन है। तो भगवद्गीता में इस विषय में भगवान उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार हम हमारे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र स्वीकार करते हैं, यह आत्मा भी एक देह को प्राप्त करके एक देह को त्याग करके अगला देह स्वीकार करती है। तो जिनके पास ध्यान में ज्ञान है वो जानते हैं ये देह हमारा असली स्वरूप नहीं है, इसलिए हमें इन कार्यों में व्यस्त नहीं रहना चाहिए, हमें उन कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए जिनके द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो महारोगना जन भारत की प्रशंसा कर रहे हैं, वही जन भारत जिन्हें उन्होंने डांटा था एक समय, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे आप सबके मित्र हो, आप सारे जीवात्मा के मित्र हो, आप सबके प्रति समानता से व्यवहार करते हो, पर आप बहुत एक देह की पहचान से मुक्त हो। आगे वो क्या कहते हैं, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया है। किसके प्रति? आपके प्रति अत्यंत अपराध किया है, पर इससे मैं जानता हूं कि आपको ना कोई नुकसान है ना लाभ। दूसरे शब्दों में, जब हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उस वैष्णव को ना कोई लाभ है ना कोई हानि। ये नहीं कि वैष्णव चाहता है सदा में ही प्रशंसा की जाए, बहुत एक समाज में हम सदा प्रशंसा की उम्मीद रखते हैं ना, वहीं तारीफ करो, हमें ये मान चाहिए ये चाहिए। तो जो वैष्णव शुद्ध वैष्णव है उसके मन में ना प्रशंसा की इच्छा है, क्योंकि ये मतलब नहीं हम उसका अपमान करें, तुम्हें प्रशंसा की उम्मीद नहीं होनी चाहिए तो हम अपमान करें नहीं, पर वैष्णव अपनी तरफ से अगर कोई उसकी निंदा भी करे आलोचना भी करे, जहां तक वैष्णव का भाव है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध वैष्णव ना वो जैसे महाराज ना कह रहे हैं मैंने आपका अपमान किया है, पर मैं जानता हूं कि इससे इस अपमान से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा है, आप ना इसका लाभ उठा रहे हो ना हानि। आप जो हो दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़े हुए हो। रूप गोस्वामी ने हमें श्री उपदेश अमृत ग्रंथ में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, छोटा सा ग्रंथ है 11 श्लोकों का, पर हर श्लोक का बड़ा गहरा अर्थ है। रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्यत तत्व कर्म प्रवर्तन संगति आगे सतो रहते सभी भक्ति प्रसिद्ध थी। अगर आप चाहते हो कि भक्ति के मार्ग में आप आगे बढ़ो तो उनमें एक गुण क्या आवश्यक है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ो। ये नहीं कि छोटी दुर्घटना आए और आप विचलित हो जाओ, कहा हमें भक्ति नहीं चाहिए। जब हरे कृष्ण, ऐसे आप लोग प्रचार करने जाते हो और कई बार प्रचार के दौरान कठिनाई भी बेइज्जती भी सहनी पड़ती है, पर हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें दृढ़ होकर सेवा में जुड़ना चाहिए। तो महाराज ढोकरा कह रहे हैं आप पर कोई असर नहीं पड़ता, हालांकि मैंने अपमान किया है, क्योंकि आप दृढ़ होकर भगवान की सेवा में
जुड़े हो।
आगे वो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, इस कारण चाहे मैं शिव जी जितना बलवान क्यों ना हूं, पर मैं नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा, वैंक्विश। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने वैष्णव अपराध किया, मैंने वैष्णव के चरण कमलों में अपराध किया है, इसलिए चाहे मैं शिव जी जितना बलवान क्यों ना हूं, मैं क्या हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभा जी क्या कह रहे हैं, प्रभा जी कह रहे हैं कि महान रघुनाथ बड़े बुद्धिमान थे, धार्मिक थे, राजा थे, राज ऋषि थे, वो समझ, जब उन्होंने जद भारत का के द्वारा उपदेश सुना, प्रभा जी कहते थे फूल इज रिकनाइज व्हेन ही स्पीक्स, जब व्यक्ति बोलता है आप विचार सकते हो कितना ज्ञानी है। तो महान रघुनाथ ने जब सुना जत भारत का उपदेश तो पहचान पाए मैंने महान अपराध कर दिया है, मैंने इस आत्मज्ञानी ईश्वर भक्त का अपमान किया है, बेइज्जती की है, मैंने इसे मूर्ख बुलाया है। और महान रघुनाथ को पता था कि वैष्णव अपराध का बड़ा भयंकर परिणाम होता है, तो तुरंत ही वो पलकी से नीचे आ गए और कह रहे क्या, मैंने आपके चरण में अपराध किया है इसलिए मैं नष्ट हो जाऊंगा। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि महाराज रघुनाथ बुद्धिमान थे और वो समझ पाए कि वैष्णव अपराध के द्वारा भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो प्रभा जी आगे कहते हैं, महान रघुनाथ के उदाहरण से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, और महान रघुनाथ के उदाहरण देकर हमारा क्या प्रयास रहना चाहिए कि हम किसी वैष्णव के चरण कमलों में क्या नहीं करें, अपराध नहीं करें, अपराध से हम बचें। और आगे जाकर प्रभा जी तात्पर्य में चैतन्य भागवत जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है, उस चैतन्य भागवत के कई श्लोकों द्वारा इसी भाव को स्थापित कर रहे हैं। जैसे प्रभा जी ने चैतन्य भागवत की मध्य लीला 13वें अध्याय में कहा गया है, चाहे व्यक्ति शिव जी जितना बलवान क्यों ना हो, वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से घिर जाएगा अगर वो वैष्णव की निंदा करेगा। ये निर्णय किसका है, किसका है, शास्त्रों का, ये शास्त्रों का निर्णय है, किसी की कल्पना नहीं। क्या वैष्णव निंदा करोगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन नष्ट हो जाएगा। और आगे फिर मध्य लीला 22वें अध्याय में कहा गया चैतन्य भगवत के, अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है तो उसकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। आप जब वैष्णव अपराध करते हो तो उसकी निंदा, उसकी, उस व्यक्ति की सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो शिव जी जितना बलवान क्यों ना हो, वो बिना शंका के नष्ट हो जाएगा। ये शासन का निर्णय। और आगे चैतन्य भागवत में कहा गया है, तो अगर कोई व्यक्ति ये शासन के निर्णय की चिंता नहीं करे और वैसा अपराध करे तो क्या परिणाम होगा, उसे एक जीवन में नहीं अनेक जन्मों में कष्ट भुगतना पड़ता है। तो दूसरे शब्दों में हम सबको बड़े सावधानी के साथ सेवा में जुड़ना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बचें। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है जिनके द्वारा यही संदेश प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए भगवत में अमरीश महाराज और दुर्वास मुनि की कथा पढ़ते हो। दुर्वास मुनि के पास अनेक योगिक सिद्धियां थी। वो जब यात्रा करते थे 60,000 शिष्यों के साथ, और उनके पास शासन का भी बड़ा गहरा ज्ञान था, योगिक सिद्धियां थी और तपस्वी भी थे, पर शुद्ध भक्त नहीं थे। तो एक समय जब वो अमरीश महाराज के महल में पहुंचे, अमरीश महाराज ने उन्हें निमंत्रण दिया प्रसाद ग्रहण करने के लिए। दिवासा ने कहा, अच्छा मैं आता हूं स्नान करके। और जब वो स्नान करने गए तो भूल गए कि अमरीश महाराज की राह देख रहे हैं, और अमरीश महाराज चिंता में थे क्योंकि उन्होंने वर सका था, पालन का समय समाप्त होने वाला था। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, मैं इस स्थिति में क्या करूं? मैंने दरवाजे को बुलाया है पर वो आया नहीं, अभी क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जल पी लो, क्योंकि जल पीना वर तोड़ना और न तोड़ना दोनों तरफ से अच्छा ठीक है। फिर दरवाजे को जैसे पता लगा, दरवाजा क्रोधित होकर आए और अपने बारों सीके से क्या राक्षस को रखना। तो अमरीश महाराज बिल्कुल जुड़े हुए थे भगवान के चिंतन में, सर्वे माना कृष्ण प्रारंभ हो, और जिसके कारण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसके कारण दरवाजा मुझे एक साल के लिए अनेक स्थानों का भ्रमण करना पड़ा। भगवान ने कहा, भगवान के पास भी पहुंच गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे भक्त इतने प्रिय हैं मुझे, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। भगवान ने भी कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने अपराधों की माफी मांगी। फिर उन्हें अमरीश महाराज के पास जाना पड़ा, जिन्होंने उनको माफ किया। तो कथा भगवता में पढ़ सकते हो, पर कहने का तात्पर्य यह है, दुर्वास मुनि बड़े प्रभावशाली योगी थे, पर उन्होंने जब अपराध किया उनको भी कष्ट भोगना पड़ा। जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया नवद्वीप में, कईयों ने साथ दिया, कईयों ने विरोध किया, और चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में अपना कीर्तन करते थे तो घंटों घंटों के लिए सारी रात कीर्तन करते रहते थे, और महाप्रभु ने उस सभा में केवल जो उनके प्रसिद्ध भक्त हैं उन्हें ही दर्शन अंदर आने का अधिकार दिया था, सबको नहीं। तो नवद्वीपवासी कई उनके शत्रु बन गए, कई कहने लगे दरवाजा बंद करके रात को कल काम करते होंगे, और एक रूप से उनकी बेइज्जती कर रहे थे। एक ब्राह्मण था जिसने सोचा कि इतना आदर मिल रहा है श्रीवास को, चैतन्य महाप्रभु रोज उनके घर में आकर कीर्तन करते हैं घंटों घंटों के लिए, क्योंकि हृदय में ईर्ष्या थी, और वैसा अपराध के पीछे अक्सर एक ईर्ष्या का भाव रहता है, इसको इतनी सुविधा आदर क्यों मिल रहा है। तो इस ब्राह्मण में ईर्ष्या थी इसके प्रति, किसके प्रति? श्रीमान के। तो इस ब्राह्मण ने दुर्गा की पूजा का सामान रख दिया दरवाजे के सामने। जब श्रीवास ने अपना दरवाजा खोला सुबह, तो देखा ओ शराब की बोतल और दुर्गा जी की पूजा का सामान, इस ब्राह्मण का भाव ये था कि लोग देखेंगे शिवा से पखंडी भक्त है और दुर्गा का भक्त है, दुनिया को दिखा रहा है कि कृष्ण भगवान का भक्त है। ये सब भाव कि शिवाज की बेइज्जती हो जाए। तो शिवाज ने कहा कि देखो पड़ोसी, मैं तो पखंड कर रहा था, मैं हूं दुर्गा का भक्त, कृष्ण का नहीं। किसी ने विश्वास नहीं किया और गाय के मूत्र के साथ पूरे स्थान को साफ कर दिया। परिणाम क्या हुआ इस अपराध का? परिणाम ये हुआ कि ये जो भक्त था, ब्राह्मण जो था लड़, उसे कोण की बीमारी हो गई। इतनी गहरी बीमारी कि घर वालों ने बाहर कर दिया। तो हमारे घर में नहीं रह सके थे, तो बहुत गंदी बीमारी हो गई है। गांव वालों ने कहा तो हमारे गांव में भी नहीं रह सकते, ये तो बड़ी बहुत भारी बीमारी हो गई है तुम्हें। तो ये ब्राह्मण गंगा के तट पर बैठा हुआ था, उसने महाप्रभु को देखा। महाप्रभु रोज गंगा में स्नान करने जाते थे और महाप्रभु से माफी मांगी कि मैंने श्रीवास के प्रति ईर्ष्या थी, मुझे बचा लो। महाप्रभु ने कहा तुम्हें हजारों साल इस अपराध के कात के कारण कष्ट भुगतना चाहिए। फिर ब्राह्मण तरफ से गया और जो महाप्रभु सन्यास के पश्चात लौटे थे उस स्थान में फिर से क्षमा मांगी। महाप्रभु ने कहा जाओ, किसके पास जाओ? तो इस कथा से भी हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा शास्त्र में अनेक उदाहरण है। एक दिन महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, सची माता से, तुम्हें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे हृदय में क्रोध है। किसके प्रति? अद्विताचार्य के प्रति। अद्विताचार्य और हरिदास ठाकुर पूज ने प्रार्थना की थी, भगवान प्रकट हुए और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके बड़े भाई विश्वरूप जाते थे बकायदा अद्विताचार्य के घर कीर्तन में उपस्थित होने के लिए और भागवत का अध्ययन करने के लिए। तो उनके बड़े भाई विश्वरूप घर छोड़कर चले गए थे, संन्यास ले लिया था। तो सची माता के मन में केवल क्रोध था। वो सोचती रहती थी यह बेटा तो है ना, इतना ईमानदार आदमी नहीं है, उसने मेरे बेटे का दिमाग बदल दिया। उनके प्रभाव के कारण मेरे बेटे ने घर छोड़ दिया, संन्यास लिया। ये था माता का क्रोध। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरी माता ने, मेरे माता के मन में एक शुद्ध वैष्णव के प्रति गलत भाव है, केवल भाव, तो गहने में भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सची माता ने कहा तभी मैं क्या करूं इस अपराध से बचने के लिए? महाप्रभु ने कहा अद्विताचार्य के चरणों की धूल लो अपने माथे पर। और माता ने कहा ये धूल मैं कैसे लूं? अद्विताचार्य तो मुझे आपके समान आदर देता है। अद्विताचार्य तो सदा कहता है सची माता भगवान की मां है, वो अपराध थोड़ी कर सकती है, ये तो भगवान की माता है। तो सच्ची माता ने कहा मैं कहीं चरणों की धूल कैसे लूं, वो तो मुझे ले ही नहीं देंगे, वो तो मुझे बहुत आदर देते हैं। महाप्रभु ने कहा मैं अपना दिव्य दर्शन दूंगा, जब द्वैताचार्य प्रणाम करेंगे, जो वो प्रणाम कर रहे होंगे अब पीछे से आकर चरणों की धूल ले लेना। भगवान ये बताना चाहते थे पूरे मानव समाज को कि उनकी माता भी अगर किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति गलत भाव रखे तो वो भी अपराध माना जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं हरि नाम का जाप करो उस अपराध से आप बच सकते हो, अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो उसे नहीं बच पाओगे, कोई आपका बचा भी नहीं सकता। तो हमें बड़ा सावधान रहना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में कि हम अपराधों से बचें। हरिदास ठाकुर हरि नाम को जाप करते थे, एक रामचंद्र खान का व्यक्ति था जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, जो सोचता था हरिदास को इतना आदर मिलता है, सब आकर दूर दूर से उसे देखने आते हैं, मुझे कोई देखता ही नहीं, वो हालांकि मैं हूं यहां का मैजिस्ट्रेट। तो ईर्ष्या के कारण उसने वैश्या का प्रबंध किया था और उसके एक दिन नित्यानंद दत्त अपने साथियों के साथ रामचंद्र खान के घर गए थे और उनके रसोई में बैठ गए और रामचंद्र खान को जब पता लगा उसने अपने प्रतिनिधि को भेज कर बोला इनको भगाओ, उनको बोलो ये मेरे घर में इतनी जगह नहीं है नित्यानंद उनके साथियों की, उन्हें गौशाला में भेज दो, वहां तो बहुत जगह है। तो नित्यानंद को जब ये सूचना मिली उन्होंने कहा ठीक है ये घर क्या, मैं गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। और इसका क्या परिणाम हुआ, ये रामचंद्र खान टैक्स नहीं भरता था गवर्नमेंट को, तो मुसलमान राज्य मुसलमानों का राज्य था उस समय, तो मुसलमान अधिकारी आया टैक्स देने के लिए, रामचंद्र खान ने घर में रैक बैठकर गाय की हत्या की और कई दिन ठहरे और पूरे ही घर को लूट लिया। तो इसके क्या ये परिणाम, क्यों, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया। तो वैष्णव अपराध से हमें बचना चाहिए। एक थे भगवान के भक्त देवनंद पंडित जो ब्रह्मचारी थे, शुरू से ही भागवत की बड़े कथा करते थे, हालांकि वो भगवत की कथा करते थे उनके हृदय में जो शुद्ध भाव होना चाहिए भक्ति का वो नहीं था। तो एक दिन वो अपने विद्यार्थियों को भागवत सिखा रहे थे और श्रीवास ने सुना भगवान का गुणगान तो अंदर आ गए सुनने के लिए, क्योंकि भक्त तो सदा भगवान का गुणगान नहीं सुनना चाहता है। और जब श्रीवास सुन रहा था उच्चारण तो उनके मन में बड़ भक्ति का भाव बढ़ा और वो जरा रोने लगे। दूसरे विद्यार्थियों ने कहा ये कौन है ये पागल, अन्य आगे रो रहा है, उसे उठाकर सड़क में फेंक दिया। और श्री देवनंद पंडित बिल्कुल चुप रहे, हालांकि उनके विद्यार्थी अपराध कर रहे थे और हालांकि वो ये दावा करते थे कि मेरे को भगवतम का ज्ञान था, क्योंकि वो भगवतम के असली संदेश को नहीं समझ पाए थे शिव भक्ति, तो वो चुप रहे। और चैतन्य महाप्रभु को जब पता लगा कि कैसा व्यवहार किया है तो बड़े क्रोधित हुए, देवनंद पंडित से चर्चा भी नहीं की। तो ऐसे हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है जिनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें ईर्ष्या से बचना चाहिए, द्वेष से बचना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। आप कितने भी बलवान क्यों ना हो, अगर हम वैष्णव अपराध करें, वैष्णव की निंदा करें, कहना हमें निंदा करने में बड़ा आनंद आता है ना। जब हम किसी का किसी के विषय में कुछ लफड़ा हो जाए साधारण भाषा में, या किसी की कोई कमजोरी कोई हमें बताए, तो हमें बड़ा आनंद आता है। और किसी के गुण कोई सुनाए हमें नींद आ जाती है, कहें ना वैसा व्यवहार होता है। गुण नहीं सुनना, केवल कमजोरियों की चर्चा करना। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हमें मधुमक्खी जैसे होना चाहिए। मधुमक्खी जो है एक फूल से दूसरे फूल जाती है, वो क्या लेती है, इसकी तुलना में जो मक्खी है फ्लाई, फ्लाई को क्या बोला, जो मक्खी है फ्लाई, वो क्या करती है, कचरे को देखती है, मल को देखती है ना। तो मधुमक्खी और मक्खी में क्या अंतर है, एक साफ स्थाना में जाना चाहती है और मक्खी गंदे स्थानों में उसका जीवन है। तो हमारी जो भावना है कई बार मक्खी जैसे रहती है, जैसे मल, मक्खी मल में रहना पसंद करती है। हमें पसंद आता है, आनंद आता है दूसरों की कमजोरियों को देखने में, दूसरों की कमजोरियों को देखने में और दूसरों की कमजोरियों को बढ़ाने में इत्यादि। और ये मधुमक्खी है, उसे क्या आनंद आता है, हर फूल से मक्खी उठाती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे भान को प्रास नहीं दे रहा है, अच्छा धूप धूप में क्या वाइटमिन डी बढ़ते जाएगा। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए कि हम मधुमक्खी जैसे रहे और मक्खी जैसे नहीं। और अगर कोई अपराध कर रहा है, कोई आपके पास आता है निंदा करने के लिए, तुम्हें सुना क्या नया लफड़ा, कोई आता है ऐसे, तो आपने कानों को बंद कर दो। पर इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई कमी है तो उसे हम नहीं सुना सके। कभी मान लो आप कोई कमी देखते हो तो आप ईर्ष्या क्रोध के भाव से रहित होकर विनम्रता के साथ वो आगे सुना सकते हो, ये कमी है हम देख रहे हैं इसे सुधारना चाहिए। पर ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में आकर हमें आलोचना इत्यादि और प्रज्वलता से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति कैसे बढ़ती है और कैसे नष्ट होती है, और नष्ट होने के विषय में क्या कहते हैं, प्रज्वलपा। प्रज्वलपा का अर्थ क्या है, भौतिक चर्चा जिसका भगवान से कोई समान नहीं, और उसकी तुलना में क्या करना चाहिए, कृष्णा कथा। भगवद गीता में भगवान जीव की तपस्या, मन की तपस्या, शरीर की तपस्या की चर्चा करते हैं। जीव की तपस्या क्या है, जीव का साधारण कार्य क्या है, तो जलता करो भौतिक वातावरण में। पर जीव की तपस्या क्या है, जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, सत्य का, सच्चाई का जीव के द्वारा, क्योंकि हमें तो आदत है झूठ बोलने की, फिर सत्य का उच्चारण कर, कम से कम जो शास्त्रों में संदेश है उसको सत्य रूप से उसको स्वीकार करो। जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो, जो आप करते हो महामंत्र के उच्चारण के द्वारा, जीव द्वारा कृष्ण कथा का उच्चारण करो और सत्य का उच्चारण करो और मिठास के साथ। भक्त जो है उसकी बोली में मिठास होना चाहिए, ये नहीं करो अपन ऐ देखा नहीं क्या, बाकी बोली में मिठास होना चाहिए। और ये भगवद गीता में लिखा है, स्पीक द ट्रूथ बट स्पीक इट स्वीटली। और जैसे प्रभुपाद ने कभी सिद्धांत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर बड़े मीठे रूप से व्यवहार करते थे। तो वाणी द्वारा हमें बड़े मिठास के साथ एक दूसरे के साथ चर्चा भी करनी चाहिए। ये उपदेश कहां प्राप्त होता है, भगवान भगवद गीता से ऊंचा पर गया है माता पदम ने। तो वैष्णवपाद से हमें बचना चाहिए, शास्त्रों की शिक्षा का पालन करना चाहिए और हमें मधुमक्खी जैसे होना चाहिए, मक्खी जैसे नहीं। एक दूसरे के गुण को देखो, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाओ और ये भाव रहेगा भक्ति के मार्ग में हम आगे बढ़ सकेंगे। पर अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे भक्ति के विषय में, उन्होंने कहा कि भक्ति का बीज उगेगा अगर आप भक्ति इस बीज को जल पिलाओगे, मतलब कि शरणम कीर्तनम के माध्यम से। तो भक्ति का शरणम कीर्तनम क्या परिणाम होगा, भक्ति का बहुत सुंदर बगीचा बन जाएगा। कई बार आप सालों साल खर्चते हो बगीचा बनाने में, है कि नहीं, सालों साल। तो मान लो आपने 25 साल परिश्रम किया है बगीचा बनाने के लिए और वो सुंदर बगीचे में ये पागल हाथी को छोड़ दो, तो बगीचा सुंदर रहेगा, हाँ क्या हो जाएगा, हाँ नष्ट हो जाएगा। ये नहीं पागल हाथी सो जाएगा, तो 25 साल का प्रयास है नष्ट हो जाएगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भक्ति का जो सुंदर बगीचा है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति भक्त हो या छोटा भक्त हो, अगर वो वैष्णव अपराध करेगा तो भक्ति का सुंदर बगीचा क्या हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारा भक्ति का बगीचा नष्ट नहीं हो, तो हमें सावधानी से भक्ति करनी चाहिए और वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। अगर हम सोचेंगे जैसे प्रभा तात्पर्य के रहे, प्रभा जी इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम शब्दों में क्या कह रहे हैं, अगर कोई सोचे कि हाँ शास्त्र बदल है पर मैं शास्त्र के प्रभाव से रहे तो उस व्यक्ति को हजारों हजारों साल तड़पना पड़ेगा। कलयुग में छूट थोड़ी बहुत है, उसका हमें लाभ भी उठाना चाहिए। कलयुग में मन का भाव का परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अगर हम मन में गलत भाव सोचेंगे किसी के विषय में तो मन में सोचने सोचेंगे क्या परिणाम होगा, एक्शन भी उसी प्रकार का होगा। इस कारण हमारा प्रयास है ना चाहिए हमेशा हम लोगों के गुणों को देखें और भगवान का मन मना बाबा मन पर भगवान का स्मरण करें। तो संक्षेप में आज के श्लोक में महाराज रघुगुना जो बड़े धार्मिक भाव के थे, जब हम गलती करें हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे आप रघुगुना जी का उदाहरण देख रहे हो, महाराज रघुगुना ने डांटा जन भारत को तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, बहुत डांटा जन भारत ने सह लिया। तो जब लोगों को पता लगा कि मैंने अपराध कर लिया है, तुरंत तो पलकी से नीचे उठे और उन्होंने माफी मांगी। तो अगर हम हमें लगे कि हमने अपराध किया है तो हमें प्रणाम करके माफी मांग लेना चाहिए और इस अपराध को फिर से करना नहीं चाहिए। ये नहीं कि आज अपराध करें फिर कल माफी मांगे फिर परसों फिर अपराध करें फिर तरसों फिर माफी मांगे। हमें उस अपराध के प्रति करके माफी मांग लेना चाहिए उस व्यक्ति से। और जैसे जो भक्त है वो तंत्र यादव है, तो इस प्रकार की बुद्धि हम रखेंगे तो फिर वैकुंठ का वातावरण रहेगा हर जगह। प्रभुपाद जी कहते थे हमारे जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो बॉम्बे दिल्ली लंदन न्यूयॉर्क में नहीं है, ये सब किधर है? वैकुंठ में। तो वैकुंठ का अर्थ है जहां की परम भगवान का गुणगान हो रहा है। तो ये होना चाहिए हमारा भाव, सदा भगवान का गुणगान करें, वैसा प्राणों से बचें। और जब भगवान देखते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं वैष्णव प्राण से बचने के लिए, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम बच सकें। तो अगर हम कुछ सुधार भी देखना चाहें हमें विनम्रता के भाव से उस भाव को आगे प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान को आकर्षित करने के लिए विनम्रता का भाव सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान दुर्वासा होने के बाद वेदांता का ज्ञान था, योगिक सिद्धियां थी, तपस्वी था, पर अमरीश महाराज उनमें बड़ा विनम्रता का भाव था। तो अगर आप भगवान को आकर्षित करना चाहते हो तो विनम्रता और मिठास का भाव होना चाहिए। अगर घमंड का भाव रहेगा तो भगवान को आकर्षित नहीं कर सकोगे। ऐसे भी अनेक उदाहरण है। तो भगवान ने देखा मनाट पथ पूर्व रथ यात्रा से पहले पूरे रास्ते को साफ कर रहे थे खुद और झाड़ू दे रहे थे धो रहे थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। तो हमारे में हम सबको विनम्रता का भाव अनुभव करना चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत है कि हम सबके दास हैं, भगवान के भक्तों के भी दास। कई बार लोग सोचते हैं हम भगवान के दास हैं उनके भक्तों के नहीं, हमें भगवान के दास हैं उनके भक्तों के भी दास हैं। तो ये दास का भावना रहेगा तो भगवत कृपा प्राप्त होगी। अगर हमारे मालिक का भाव आ जाएगा तो फिर समस्या होगी। अगर ये भाव है कि हम सबके नौकर हैं सबके दास हैं, फिर भगवान की कृपा सरलता से प्राप्त होगी। हमारे मन में ये दास का भाव सेवा का भाव बना जाए। सेवक बनना मालिक बनना से ज्यादा बेहतर है आध्यात्मिक जीवन है। भौतिक जीवन में तो हम सोचते हैं हम सबके मालिक बनना चाहते हैं, और वैष्णव जीवन में हमारा भाव बनना चाहे हम सबके दास बनना चाहते हैं। और दास बनेंगे हम सबके नामों के आगे दास जोड़ा जाता है। दास का ये अर्थ नहीं केवल भगवान के नौकर, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्तों के भी नौकर, फिर हम भगवान की कृपा के अधिकार बनेंगे। तो हमें हमारे शास्त्र में पूरी शिक्षा दी गई है हर विषय पर, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए अपने जीवन को सुधारने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।